मैं आपका रद्दअमल जानना चाहूँगा कि आपकी क्या नज़र है इस सारी सूरत हाल पर जो शाम के सिनारियों में बन रही है या आज देखने में आई।
यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चीज़ का ये है कि अगर आप डेमस्कस के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को देखें और ख़ासकर जून 2012 के बाद अगर आप डेमस्कस के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को देखें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि गूता का जो रीज़न था, चाहे वो ईस्ट का हो या वेस्ट, वेस्ट गूता भी एक ज़माने में आतंकवादियों के कब्ज़े में था, तो ये गूता का जो रीज़न था उसको इस तरह से, यानी उस पर कंट्रोल था आतंकवादियों का और वेस्टर्न सपोर्टेड जो भी आतंकवादी है उनका, इस तरीके से कंट्रोल था कि ऐसा लगता था कि दमिश्क कभी भी उस पर कब्ज़ा जो है इनका हो सकता है। मैं आपको बताऊं, 2013 में नवंबर की बात है, मेरी फ़्लाइट थी, तेहरान से ही फ़्लाइट थी दमिश्कस की, और ये वो टाइम था जब दमिश्क शहर पे तो हुकूमत का कब्ज़ा था और एयरपोर्ट पे कब्ज़ा था, पर दरमियान में सिर्फ जो एक रोड जाती थी उसके अलावा हर कुछ जो था उस पे कब्ज़ा दहशतगर्दों का था, और एक छोटी जो वहाँ जो रोज़ा है उस पे सिर्फ हुकूमत का कब्ज़ा था। मुझे याद है ये वो टाइम था जब फ़्लाइट्स जब तेहरान से जाती थी और जब वो लैंड करती थी दमिश्क एयरपोर्ट पे तो उनकी लाइट्स ऑफ करके उनको लैंड करना पड़ता था रातों को, क्योंकि वो लाइट्स देख के स्मॉल आर्म से इलाके के जो आतंकवादी थे ये उस सिविलियन एयरक्राफ्ट पे फायर करते थे। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है अक्टूबर 2013 का, जब तेहरान से जाते वक्त जब हमारी फ़्लाइट थी, जब वो लैंड कर रही थी दमिश्क में तो उसके लाइट्स ऑफ कर दिए थे। तो मैं पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस्म के लोग थे जिनको कि ये सिविलियंस, सो कॉल्ड सिविलियंस जिनको कहा जाता था, मैं पहले ये आपको बता देना चाहता हूँ ये किस किस्म के लोग थे जो ये गूता में रहते थे, आतंकवादियों के साथ मिले हुए जो लोग थे, और इनकी ये क्या कार्रवाई करते थे, यानी एक सिविलियन एयरक्राफ्ट पे स्मॉल आर्म से फायर करना आप समझ सकते हैं कि दुनिया के कहीं भी किसी भी लॉ में जायज नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें कि ये वेस्टर्न पूरी की पूरी जो एक कोलिशन थी जो कि चाहती थी कि असद की हुकूमत वहाँ से चली जाए, इनका पूरा का पूरा विश्वास भी, इनकी पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि एक डिपेंडेंसी जो थी वो भी इस गूता रीजन में जो आतंकवादी बसे हुए थे इनके ऊपर थे। इनको हमेशा ये लगता था कि अगर कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन अगर ये आतंकवादी चाहेंगे तो फाइनली दमिश्क पर कब्ज़ा हो जाएगा, और एक बार जब दमिश्क पर कब्ज़ा हो गया तो बात की हुकूमत चली जाएगी और शायद वो सिर्फ तरतूस और जो साहिल जो है वहां पे उस इलाकों में महदूद रह जाए। वहाँ पे जिस तरीके से 3 जनवरी के बाद जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और सीरियन आर्मी ने जो विक्ट्री,
नाजरीन साहरान हमारा रबता मुनखता हो गया जनाब सौरभ कुमार शाही साहब से। राशिद नकवी साहब आपको जहमत दूंगा,
उन्हीं की बात को मैं जारी रखता हूँ अगर इजाज़त
दें। बिल्कुल,
देखिए गौता शर्की की शिकस्त जो है ना ये वाकई बहुत बड़ी शिकस्त थी, और ये खुद इतना बड़ा रद्दअमल खुद जाहिर कर रहा है कि ये गौता शर्की अभी तक इनसे हजम नहीं हो रहा, यानी ये जो अमेरिका और बरतानिया हो फ्रांस हो बज़ाहिर ये कोई, यानी इतनी बड़ी बज़ाहिर जिसे कहते हैं एरिए के उनवान से अगर देखें कोई इतनी बड़ी फतह नहीं है जैसे पहले बड़े बड़े शहरों पे इन्होंने किया है, कि मसलन एक दमिश्क के साथ एक जो है वो मुल्का एक इलाका है, लेकिन ये आखिरी उम्मीद थी, यानी इसको वो एक लटकती तलवार के तौर पे उन्होंने बशार असद के सर पे रखा हुआ था कि किसी वक्त भी इस इलाके से ये लोग उठेंगे और आके दमिश्क पे कब्जा कर लेंगे, और एक कब्जा मामूली सा कब्जा करना जरूरी था, उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये फैला देना था कि पूरी हुकूमत ख़त्म हो गई, बशार असद ख़त्म हो गया, फलां फलां हो गया, ये एक आखिरी आसरा था उन्हें जो होता है शर्की में, और जो ही ये आखिरी आसरा उनका ख़त्म हुआ मैं समझता हूँ इसमें भी थोड़ा उनसे देर हो गई है, यानी अभी मुकम्मल सफाई हो चुकी है, यानी होता है शर्की के अंदर बाकायदा सीरियन जो है वो शाम के परचम लहरा दिए गए हैं, अभी 2 दिन पहले ये हमला करते तो शायद उसका ये असर होता कि वहाँ से वहाँ के अब जितने दहशतगर्द हैं या मुंतकिल कर दिए गए हैं या वहाँ से वो निकल चुके हैं, यानी इस मौके पे आके खुद ये भी एक स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक बहुत बड़ी गलती है इस वक्त, जो इस वक्त 4 दिन पहले करते तो शायद ये इलाका उनके शायद वाली बात है, लेकिन जो सूरत हाल हमें सुबह से नज़र आ रही है, एक बड़ा खूबसूरत जुमला एक चल रहा है अरबी का जुमला जिसका उन्होंने तर्जुमा ये किया है कि ये क्या हमला था कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतों ने एक ऐसा हमला किया, लोग सो रहे थे हमला हुआ और लोग सो ही रहे थे तो हमला ख़त्म हो गया, यानी वो जो खौफ था एक ये था कि इस हमले में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके नतीजे क्या निकला आप भी अपने खुरू शुरू में बता रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यानी 110 कम से कम मिसाइलों की बात की गई है और 2 दिन से इतना शोर शराबा किया गया है, लेकिन जो दमिश्क के जो मेन चौक हैं वो सुबह 7 बजे 6 बजे ऐसे आबाद थे कि शायद रूटीन में भी ऐसे लोग नहीं निकलते, क्योंकि कुछ लोग तो बाकायदा इस रिएक्शन में भी निकले हैं कि आपने हमें दबाने की कोशिश की है, आपने हमें तबाह करने की कोशिश की है, लेकिन हम बशार असद के साथ हैं, हम शाम के साथ हैं और हम इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। यानी वो बजाय ये कि एक हमारे दोस्त ने वहाँ से मुझे खुद जो है एक मैसेज किया कि पहले हम सुबह की नमाज जो है वो अलार्म से जो है उठा करते थे, लेकिन आज जो है हमें दुनिया के 3 बड़े ममालिक ने अपने मिसाइलों से हमें जगाया, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें वक्त पर उन्होंने नमाज। यानी एक ऐसा हमला जिसका एक रोब और ये एक वहशत तारी हुई थी, बरक्स उसका साबित हुआ। यानी वो जिस मकसद के लिए ये ममालिक ये काम करना चाह रहे थे कि जो मुकामती ब्लाक है वो खौफ का शिकार हो जाएगा और उसके अंदर मजीद आगे बढ़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, बरक्स हुआ है। यानी बजाय इसके फ़ायदे के मैं समझता हूँ कि अमेरिका को उसका नुकसान हुआ है, और उसका नुकसान ये तो फौरी नुकसान है, और उसके जो असरात मुरतब होंगे उसके बाद वो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है वो अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरनाक साबित होंगे।
जी बहुत शुक्रिया। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी यहाँ पर क्या है, और अक्वामे मुत्तहदा के जनरल सेक्रेटरी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने तमाम दुनिया के मुल्कों को मुतनब्बे किया है और उनसे चाहा है कि वो सब्र व बुर्दबारी का मुजाहरा करें और अक्वामे मुत्तहदा को ज़ाहरन काम करने दें। इस हवाले से शाम पर जो 3 मुल्कों ने हमला किया, अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने, क्या कहेंगे आप इस पर?
जी देखें, यूनाइटेड नेशंस का जहाँ तक सवाल है तो मैं उसे पेपर टाइगर मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसकी यूटिलिटी है, उसकी यूटिलिटी है यूनिसेफ में, यूनेस्को में, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में यूटिलिटी है जहाँ पर कि वो कोई पॉलिटिकल जिसका कोई रद्द अमल कहीं से ना आए। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से सारे कानूनों के इंटरनेशनल लॉ के धज्जियाँ उड़ाते हुए अटैक्स किए गए हैं, इस यानी कि रीजनल लॉज को छोड़ दी, इंटरनेशनल लॉ को छोड़ दी, अपने मुल्क के लॉ को भी, यानी जो पिछले यानी इराक पे और तमाम इन जगहों पे जब भी हमले किए गए वो भी यूएन से मैंडेटेड नहीं थे, लेकिन कम से कम अपनी जिस मुल्क ने हमला किया उसके पार्लियामेंट से मैंडेटेड थे। पर यहाँ तो ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसीजन दिया, ना तो अमेरिकन कांग्रेस ने डिसीजन लिया, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, वहाँ डिसीजन ले लिया गया, तो लीगली तो आपको पता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मेरा गुस्सा, मेरा इशारा जो है वो उन दूसरे मुल्कों पे है। मेरा इशारा जो है वो सऊदी अरब, मेरा इशारा जॉर्डन और इस तरह के मुल्कों पे है। चले जी, अमेरिका और आप उससे क्या तवक्को थी, वो तो उनसे पता था कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन ये जो खित्ते के मुल्क हैं जो अपने आप को अरब ममालिक कहते हैं, जो अपने आप को अरब सॉलिडरिटी का परचम लहराने वाले कहते हैं, इनका क्या रिएक्शन था? ये खुशी मना रहे थे, आप टाइमलाइन पे जाके देखें, इनके तमाम जो कमेंटेटर्स हैं, इनके तमाम जो यानी गवर्नमेंट सपोर्टेड जिस तरह के जो थिंक टैंक्स हैं उनका आप रद्द अमल इस पर पढ़ें, वो बड़ी खुशी इस पर मना रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि ये लड़ाई हार चुके हैं, जंग जो है वो जीती जा चुकी है सीरिया में, ये जो वहाँ पर अचीव किया गया उसको वापस से रोल बैक नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर ये 113 मिसाइल जो दागे गए हैं उस पर अगर इनको खुशी जाहिर करनी है तो खुशी जाहिर कर लें, लेकिन इनको पता है कि स्ट्रेटेजिकली भी और टैक्टिकली भी ये सीरिया में जंग हार चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इसके बाद अभी साउथ में, सदर्न सीरिया में कैंपेन स्टार्ट होगा, दर्रा कुनेत्रा का जो रीजन है वहाँ पे अभी कैंपेन स्टार्ट होगा विद इन अ वीक, और वहाँ से भी आतंकवादी मार के भगाए जाएंगे। इसके अलावा ईस्टर्न सीरिया में देरजूर में और रका में जो एक छोटा सा ट्राइंगल बचा है जहाँ पर दाएश अभी भी है, अमेरिकन कंट्रोल का जो इलाका है वहाँ पर एक ट्राइंगल है जहाँ पर अभी भी रहते हैं करीब 250-300 उनके लोग, और वो जो बार बार हमला करते रहते हैं दूसरे शहरों पर, उनका भी खात्मा जो है अगले हफ्ते वहाँ भी कैंपेन शुरू होने वाली है। तो जो कैंपेन एक आतंकवाद के अगेंस्ट चल रही थी सीरिया में वो कैंपेन जारी रहेगी, और जहाँ तक सऊदी अरब और तमाम खित्ते के जो सुन्नी ममालिक हैं उनका सवाल है, तो वो पहले भी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, पहले भी उनकी कोई औकात नहीं थी, और अब तो इस तमाम जो ये जो पूरी की पूरी एक फार्स प्ले की गई है, इसके बाद ऐसे भी उनका कोई रोल जो है इसमें नहीं रह जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया।